ये वाणी हमारी वास्तविकता की याद दिलवा रही है कि ए मूर्त, तू संसार रूपी मेले में आया है और जैसे सबकी बारी आती है तेरी भी बारी आएगी और इस संसार से तो ये अकेला ही जाना पड़ेगा। इसलिए मेला देखना प्रभु बिसरा, इस मेले की चकाचौंध में फंसकर तू ईश्वर को ना भुला। साध सीख सुनो चतरा, हे चतुर पुरुष, हे बुद्धिमान पुरुष, तू साधु की इस सीख को सुन। ये एक सरल सा संदेश है हम सबके लिए, क्योंकि महाराज जी बार बार ये बात कहते हैं कि संसार की चकाचौंध देखकर मनुष्य इस माया जाल में फंस जाता है। इससे कैसे निकलें, इस बात की याद करें इसके लिए वैदिक काल से हमारे देश में एक रीति चली आई है कि हमको कहा जाता है पितृ यज्ञ करने के लिए। पितृ यज्ञ तो हम ठीक प्रकार से जानते नहीं क्या होता है, लेकिन उसको विभिन्न परंपराओं के रूप में हम सारी जिंदगी मनाते रहते हैं। जिसके घर से कोई विदा हो जाता है, कभी हम उसको वर्ष में एक बार याद करते हैं, उसके नाम पर कुछ करते हैं। अर्थात हम अपने पितरों को याद करते हैं। और उनसे अपना संबंध बनाते हैं। वो कहां गए हमको पता नहीं, और कई जगह तो ये कोशिश भी की जाती है कि हमारे जो पितर हैं वो प्यासे हैं, वो भूखे हैं, इसलिए जब उनके नाम पर कुछ करते हैं तो वही चीजें हम दान करते हैं, वही भोजन हम घर में बनाते हैं जो उनको प्रिय है। अर्थात उनकी याद करके उनकी प्यास को याद करते हैं, किस वस्तु की प्यास उनके मन में थी, और उनकी याद करके हम अपनी भी प्यास उस वस्तु के द्वारा पूरी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि पितरों के मोक्ष के लिए बड़े कर्मकांड किए जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जिन बंधन में पितर हमारे जीवित रहे और जिस बंधन को लेकर वो इस संसार से विदा हुए, उस बंधन को मैं किसी यज्ञ के द्वारा, किसी कर्मकांड के द्वारा, किसी विधि विधान से खत्म कर सकता हूं, अर्थात मैं उनको मोक्ष दिला सकता हूं। इसका मतलब ये बात तो मैं समझ रहा हूं कि उनके बंधन किसी पूजा पाठ से, किसी यज्ञ से, किसी दान से खत्म किए जा सकते, लेकिन मैं ये भूल रहा हूं कि हर जीव जो संसार में आया है वो गुरु आज्ञा का पालन करके अपने बंधन इस देह के रहते रहते इसी शरीर में काट सकता है। इसका मतलब जो ये पितृ यज्ञ है इसकी वास्तविक परंपरा क्या है? इसकी वास्तविक परंपरा यह है कि जहां पितृ समा गए, अपने असली घर पहुंच गए, हमारे लिए तो वो एक मौत का ठिकाना है, लेकिन वास्तव में वो मौत का ठिकाना नहीं है, वो असली जीवन का ठिकाना है। और वो असली जीवन हमारी इस देह के अंदर भी मौजूद है, और उस जीवन में मैंने इस देह के रहते रहते मन और इंद्रियों के बंधन से मुक्त होकर मैंने उस जीवन में प्रवेश करना है जिसको योग की भाषा में कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है। वो मेरे देह के रोम रोम में मौजूद है और वो हर संसार की हर वासना से मुक्त है, और उसमें इतनी शक्ति है कि यदि मैं उसका उपासक बनूं तो धीरे धीरे मैं अपने मन अपनी इंद्रियों के बंधन से मुक्त होकर उसमें स्थायी निवास कर सकता। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो पितृ यज्ञ है ये वास्तव में हमको उस मौत की याद दिला रहा है जहां इंद्रियों और मन का बंधन नहीं है, जहां इंद्रियां और मन का बंधन नहीं है वो मौत कैसे हो सकती है? इसलिए वहां अनंत जीवन है, इटर्नल लाइफ है, वही मोक्ष है, क्योंकि वहां पहुंचकर फिर वापस आना नहीं होगा। वो असली लोक है जहां का मैं वासी हूं, जहां पहुंचने के लिए मुझको ये मानव जन्म दिया गया है, और इसीलिए जैसा कि हम सुन रहे थे अभी अभी साधी का नियम गुरुदेव ने सबसे पहले दिया, इसी बात से क्योंकि जीने की दिशा जो हमने तय की है, जो संसारियों ने तय की है, वो संसार के सुख इकट्ठे करके उनके भोगने की दिशा हमने सीखी, जबकि गुरु आपको याद दिला रहा है ये तो तेरा बंधन है, ये तो तेरी दुर्दशा है, ये तो तेरी मौत है, क्योंकि इस देह की मौत होगी और उस समय मुझको पछताना पड़ता है। क्यों पछताना पड़ता है? क्योंकि जिस समय मौत होती है उस समय मेरी इंद्रियां और मेरा मन उस कुंडलनी में ही प्रवेश करता है, मेरा प्राण भी उस कुंडलनी में ही प्रवेश करता है जिसको रामकृष्ण परमहंस काली कहा, जिसको रामकृष्ण परमहंस मां कहा करते थे। कहते थे कि सारा संसार मां से ओतप्रोत है, वो खुद कहते थे मेरी देह में भी वही मां समाई हुई, वही इस देह का संचालन कर रहे हैं, उसके बिना कुछ है ही नहीं। अभी जब वाणी पाठ हो रहा था प्रारंभ में तो उसमें वाणी की एक पंक्ति आ रही थी कि जिस प्रकार सागर में लहर समा जाती है, उसी प्रकार ईश्वर सत्ता में ये संसार समा है। उस पंक्ति को सुनकर मैं सोच रहा था कि वास्तविकता लहर की है या वास्तविकता जल की है। तो विचार करने पे पता लगता है कि लहर नाम की तो कोई सत्ता है ही नहीं समुद्र के अंदर। समुद्र में जिसमें इतनी लहरें नजर आ रही हैं, विचार से पता लग रहा है कि समुद्र में लहर नाम की वस्तु तो कोई है ही नहीं। यदि कोई वस्तु है सागर के अंदर तो वो केवल जल है। उसी को रामकृष्ण परमहंस कह रहे हैं कि इस संसार में यदि किसी की सत्ता है वो केवल मां है। इस देह में यदि किसी की सत्ता है, कोई जीवन शक्ति है, तो वो मां की शक्ति है। तो हमारा जो मन और इंद्रियां हैं, ये ठीक उसी प्रकार हैं जैसे जल के अंदर तरंग है। तरंग की अपनी कोई सत्ता नहीं, तो तरंग के कारण समुद्र में बेचैनी नजर आ रही है। लेकिन जिसकी नजर जल पर हो तो फिर उसको बेचैनी नजर नहीं आएगी। इसीलिए जो मनुष्य इंद्रियों के भोगों में फंसा हुआ है, मन के अंदर इच्छाओं की तरंगों में फंसा हुआ है, वो अंदर सागर होते हुए भी प्यास से मर रहा है। अंदर वो सागर लहरें मार रहा है जिसका नाम कुंडलनी शक्ति है, जिसका नाम काली मां है, जिसका नाम ईशा है। तो गुरु मुझको उसकी याद दिला रहा है। तो उसके लिए जो जीता है, उसकी ओर अग्रसर होने के लिए जो ईश्वर की याद करता है, वो वास्तव में पितृ यज्ञ कर रहा है और कोई पितृ यज्ञ नहीं। तो वो शक्ति यज्ञ रूप है, उसमें मैंने अपनी इंद्रियों का, अपने मन की इच्छाओं का, मन की तरंगों का, अपने संकल्पों का होम करना है। और किस आहुति के द्वारा? यज्ञ में तो आहुति दिया, तो यज्ञ सामग्री जो है उसकी आहुति हम यज्ञ में देते हैं। तो यज्ञ सामग्री हमारे पास कौन सी गुरु ने दी है? ये जो महामंत्र है ये वही यज्ञ सामग्री है जो इस यज्ञ में मैंने होम करनी है। यदि मैंने इस सामग्री को उसमें होम किया तो उसने जो उस होम के द्वारा जो अग्नि प्रदीप्त होगी इस देह के अंदर, उस अग्नि का नाम ही कुंडलनी शक्ति। यही वो ईश्वर शक्ति है जो तुझको मोक्ष प्रदान करती है, जो तुझको ब्रह्म के साथ एक करती है। तो तेरा वो जीवन है, मौत के वक्त भी ये तेरा संग नहीं छोड़ती। जब इस देह की मौत होती है तो हम सब देखते हैं कि सबसे पहले मनुष्य को बाहर का होश गायब हो जाता है। सब चीज होते हुए भी उसको किसी वस्तु का होश नहीं रहता। आप कितने ही शास्त्र सुनाइए उसको, वो नहीं सुनता। कितना ही आईना दिखाइए उसको, वो नहीं देखता। ना उसको सर्दी का एहसास है, ना उसको गर्मी का एहसास है। इसका मतलब उसकी इंद्रियां मन के अंदर प्रवेश कर चुकी है। उस हालत में वो जीव जो देह के द्वारा क्रिया कर रहा है, इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर रहा है, वो जीव इस समय वो अपने मन के संकल्प के बंधन में जी रहा है, जबकि बाहर का होश उसका खत्म हो चुका है, इंद्रियों से संबंध उसका टूट चुका है, लेकिन मन के अंदर संकल्प अभी बाकी है। इसी को कहते हैं कि आखिरी वक्त में जैसा उसको स्वभाव बंधन में ले जाता है या जिस स्वभाव के वशीभूत होकर वो संकल्प करता है, उसी संकल्प को लेकर वो प्राण के अंदर प्रवेश कर जाता है, अर्थात उसका मन शांत हो जाता है, संकल्प का उदय खत्म हो जाता है। फिर ना उसको कोई फिक्र है, ना उसको कोई क्लेश है, ना इसको कोई दुख है, ना कोई इसको पीड़ा है। तो ये मन और इंद्रियों का प्रवेश उसके प्राण में हो जाता है और फिर अगली गति होती है, उसका प्राण भी शांत हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि श्वास नहीं आ रही है, इसकी नाड़ी नहीं चल रही है। कि ये प्राण जिसमें प्रवेश होता है उसी का नाम काली है, उसी का नाम कुंडलनी है, उसी का नाम महाप्राण है। अब बताइए, ये जो महाप्राण है यही वो अग्नि है जिसके द्वारा ये शरीर गर्म प्रतीत होता है। तो जिन्होंने भी अंतिम लीला मनुष्य की देखी है ध्यान से, वो जानते हैं कि कैसे धीरे धीरे पहले मनुष्य के पैर ठंडे होते हैं, फिर ऊपर नाभि के पास ठंडक आती है, फिर हृदय के पास ठंडक आती है, फिर कंठ के पास ठंडक आती है, फिर मस्तक में फिर भी गर्मी होती है, उसके पश्चात मस्तक में जब ठंडा होता है तब हम कहते हैं कि इसने देह त्याग दी। तो जीव कहां गया, उसकी इंद्रियां कहां गई, उसका मन कहां गया? जो संसार के बंधन में, इंद्रियों के बंधन में और वासना के बंधन में जी रहा था, वो जीव कहीं नहीं गया, वो अभी भी उस ईश्वरीय शक्ति के अंदर, उस काली के अंदर, उस कुंडलनी के अंदर सुरक्षित है। लेकिन जिस वासना को लेकर उसने प्रवेश किया था उसके अंदर, वही वासना उसको उस शक्ति से वापस बाहर ले आती है, अर्थात उसका जन्म, उसकी देह का जन्म उसी शक्ति के द्वारा ही होता है और उसका सारा कर्मफल, सारा उसका स्वभाव, सारी उसकी वासना वो दिव्य शक्ति सुरक्षित रखती है। और जब नई देह ये जीव धारण करता है, उस देह में पुनः उसके प्राण उसी कुंडलनी शक्ति से वापस लौटते हैं, मन उसका वापस लौटता है और उसकी इंद्रियां वापस लौटती हैं, जिसके द्वारा पुनः नई देह का संचालन शुरू होता है। लेकिन वो अपने उस निज स्रोत को भूला रहता है, उसको अपने मन का पता है, मेरे मन में क्या इच्छा होती है, अपनी प्यास का भी उसको पता है, लेकिन वो भूला हुआ है कि ये प्यास तो मैं पूर्व जन्म से लेकर आया हूं। वो यही समझता है ये प्यास तो यही पैदा हुई है, वो लोगों की नकल करता है, लोगों को देता है, इसीलिए वो संसार की चकाचौंध देखकर, इस इंद्रियों के माया जाल में, संसार के माया जाल में ऐसा फंसता है कि पूरा जन्म बर्बाद हो जाता है, उसको होश ही नहीं आता। उसकी जो असली संपत्ति थी, उसका जो असली जीवन था, जिसमें शांति थी, जिसमें दुनिया का कोई दर्द प्रवेश कर ही नहीं सकता था, उस शांति रूप उस मां के अंदर उसने प्रवेश कर दिया, उसका अनुभव करना था, उसके लिए उसने गुरु के मार्गदर्शन अनुसार साधना करनी थी, गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार उसने सांसारिक जीवन जीना था। वो कैसा जीवन था? जिसमें सादगी थी, जिसमें सत्य का पालन था, सत्य पर फेथ था। मां जी कहते थे सत्य एक ईश्वर है, तो जो केवल ईश्वर पर भरोसा करता है संसार पर भरोसा नहीं करता। वो जानते हैं जिस प्रकार मेरा संचालन वो सत्य कर रहा है, उसी तुम्हारे संसार का संचालन भी वो सत्य ही कर रहा है। उस सत्य को छोड़कर, उस समुद्र को छोड़कर मैं लहर के बंधन में आ गया। लहर मेरे लिए वास्तविक वास्तविक चीज है और जो जल है वो वास्तविक नहीं। मेरी ये हालत बनी है, इसलिए सब कुछ याद दिलाते हैं, सादगी की, सत्य पालन की, सेवा की। मैं स्वार्थ में फंसा हुआ हूं, सारे जगत से संबंध मेरा स्वार्थ करके है। और स्वार्थ क्या है? ये मेरे जीवन में सुख का कारण बनेंगे, ये मेरा स्वार्थ। जिससे भी मैं संबंध बनाता हूं, जो कुछ भी करता हूं, उसके पीछे मेरा केवल एक मोटिव होता है, ये मेरे सुख का साधन बनेंगे। इससे ऊपर ना मेरी कोई सोच है, ना मेरी कोई मंजिल है, ना मेरी कोई अकल। तो मैं वास्तव में बेअकल होकर गुरु की सारी आज्ञा को भूला रहता हूं और संसारियों की नकल करके इनके बंधन में फंसा रहता हूं। उसी प्रकार जिस प्रकार कोई लहरों को गिनता हो और समुद्र को भूल जाए, मेरी वही स्थिति। तो मेरे अंदर वो शांति का समुद्र, शांति का सागर हिलोरे मारता है, मेरे रोम रोम में बसा हुआ है। जिस दिन उसका बोध होता है, उस दिन पता लगता है उस सत्ता के अलावा इस देह में कोई दूसरी सत्ता है ही नहीं। इसलिए उस सत्ता को अनुभव करने वाला साधक, उस सत्ता को अनुभव करने वाला जिज्ञासु इस सॉलिड देह को ही उस सत्ता से ओतप्रोत देखता है। इसकी सॉलिडनेस उसके लिए खत्म ही हो जाती, जीते जी खत्म हो जाती है। लेकिन अभी उसकी पूर्ण हालत नहीं, उसको अंतिम लक्ष्य भी प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए उसकी वो स्थिति टूटती है। तो फिर देखता है वही मन वापस आ गया, वही इंद्रियां वापस आ गई और वही अशांति संसार की वापस आ। इसलिए असली ईश्वर से प्रार्थना करने वाला तो वो जीव, वो मनुष्य जो उस अमृत को छोड़कर इस जहर के सागर में जब लौट आया है। इसलिए उसका मन फिर यहां नहीं रहता, वो इस संसार के जहर को जानता है। तो इसीलिए ऋषि उस जहर की याद दिला रहा है हमको, जिसको उपनिषद में कहा गया कि दुखम सर्वम अनुस्मरते काम भोगान निवर्ते। ये उस स्थिति का ऋषि आपको याद दिला रहा है कि यहां सब कुछ दुख ही है। ये उसका अनुभव बोल रहा है, वो थ्योरी नहीं पेश कर रहा है, ये उसका अनुभव कह रहा है कि यहां सब कुछ दुख ही है। तो इस दुख से तो मुक्ति कैसे प्राप्त करेगा, कैसे ऊपर उठ सकता है? इसलिए वो कह रहा है, तेरा मार्गदर्शन कर रहा है, काम भोगान निवृत्त। तो कामनाओं और भोगों से निवृत्ति का, और तू मूर्ख जिसका कोई गुरु नहीं, जिसे नाम आज के लिए गुरु बना तो लिया है, लेकिन सोच रहा है वो संसारी तरीके से, गुरु के तरीके से नहीं सोच रहा कि वो संसार के लक्ष्य बना रहा है, अपने बच्चों के लक्ष्य बना रहा है कि कामना और भोगों को कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए साधन कैसे इकट्ठे किए जाए, उसके लिए कैसे शिक्षा ग्रहण की जाए, कैसे अपने जीवन का विकास किया जाए। तो जीवन का जो पतन का रास्ता है वो उसको विकास का रास्ता करके देखना है, उसको होश है ही। तो जिसकी बुद्धि का लेवल यहां खड़ा हुआ है वो तो बेहोश मनुष्य, वो बाहोश का है। तो इसीलिए उसके तो दुर्दिन आने ही वाले हैं, इसको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। उसके जीवन की गारंटी है कि उसकी दुर्दशा जरूर होगी, उससे वो किसी हालत से बच नहीं सकता, ना उसका परिवार बचेगा ना वो बचेगा। और इस लक्ष्य को लेकर जो समाज तैयार किया है उसने, ना वो समाज बचेगा। महाजी कहते हैं साफ साफ समता विलास में लिखा है कि जो इन भोगों में फंस जाता है, जो इस भोगवाद में, इस मेटीरियलिज्म में, इस मादावाद में फंस जाता है, वो घोर रजोगुणी जीव एक दिन सर्वनाश को प्राप्त। इसीलिए हर जीव के लिए एक ही सत्पुरुष का आदेश है कि तू सतोगुणी बनने की कोशिश कर। जीवन में हर महीने हर वर्ष तेरे अंदर सतोगुण की वृद्धि होनी चाहिए। और इस देह के अंदर जो शक्ति है जिसके अनुभव में वृद्धि होती है, जीव के अनुभव में जिसकी वृद्धि होती है, वो सतोगुणी जो धारा है इस देह के अंदर, उस धारा का नाम ही कुंडलिनी शक्ति। जो उस सिमरन से जिसका अनुभव होता है, जिसको गुरु दिया करता है, जिसकी गुरु मंत्र के द्वारा उपासना करने की बात करता है, तो जब तक मनुष्य उस सिमरन को अपनाता नहीं, उस देह के अंदर स्थित शक्ति को जीवन नहीं समझता, संसार को मौत का सागर नहीं समझता, अपने मन की वासना को, इंद्रियों के भोगों को बंधन नहीं समझता, वो साधु को धारण क्यों करेगा? वो सत्य का पालन क्यों करेगा? वो संसारों की नकल करेगा? कह रहा यहां तो बिना झूठ के कोई काम हो ही नहीं सकता। उसने तो झूठ का रास्ता अपनाना ही अपनाना है, क्योंकि उसको ईश्वर की याद नहीं आ रही है, उसको भोगों की याद आ रही है। और भोग भोगना, भोगों को इकट्ठे करना और भोगों के लक्ष्य की पूर्ति करना, ये उसके जीवन का उद्देश्य है, ये उसकी मंजिल है। इसलिए उसने तो झूठ का आसरा लेना ही लेना, तो दुनिया वाले उसकी नकल करते, गुरु की बात को डिनाई कर देते, काट देते, कहते संसार में ऐसा थोड़ा चलता है। याद रखिए, इस पितृ यज्ञ के द्वारा, इस सिद्धांत के द्वारा जितने भी ऋषि हैं, जितने भी सत्पुरुष हैं, हमको याद दिला रहे हैं कि ये पितृयज्ञ तुझको मौत की याद दिला रहा है। तेरा जो फाइनल गोल है वो मौत ही है, लेकिन ये मौत नहीं जो हम लोग मरते हैं, वो मौत जहां इंद्रियों का और मन का बंधन खत्म हो जाता है परमानेंट, तो वो मौत नहीं है, वो जीवन है। संसारियों के लिए वो मौत है, अंधेरा है, लेकिन जिज्ञासु के लिए, भक्त के लिए उसमें वो जीवन है, उसमें प्रकाश है, उसमें चेतना है। इसीलिए जीते जी मैंने ये पितृयज्ञ करना है, अर्थात इस मन और इंद्रियों के बंधन से मैंने गुरु के वचनों का पालन करके, गुरु के नियमों का पालन करके, मैंने इस देह के अंदर स्थित उस जीवन सत्ता के अंदर प्रवेश करना है, उस कुंडलिनी शक्ति के अंदर प्रवेश करना है। जो काम जीते जी होता है, मरने के बाद नहीं होता, मरने के बाद भी होता है, लेकिन जिस मन को लेकर, जिस इंद्रियों को लेकर, जिस वासना को लेकर तुमने उसके अंदर प्रवेश किया था, उसी वासना के अनुसार उससे नई देह तेरी बाहर आ जाती है, नई देह तुझको जीने के लिए मिलती है, और तेरा बंधन वैसे का वैसे ही रहता है। जैसे पूर्व जन्म में तू तड़पा था इंद्रिय भोगों के लिए, नए जन्म में भी तू वैसे ही तड़पेगा, वैसे ही जो है परेशान हुआ, वैसे ही दुखी हुआ, वैसे ही पीछे। इसलिए ये यात्रा मैंने खुद तय करनी है, मेरा खानदान, मेरे बच्चे मेरी यात्रा को पूर्ण नहीं कर सकते, इसलिए इस अज्ञानता में ना पड़े, इससे बचे। और अंदर वो जो जीवन सत्ता मौजूद है, जिसको रामकृष्ण परमहंस काली कहा करके कहा करते, जिसको कुल कुंडलिनी माँ करके कहा करते, मैंने उसके अंदर प्रवेश करना है, उसको अनुभव करना है। इसके लिए आपको ये पांच नियम पालन करने पड़ते हैं, तब जाकर वो कार्य पूर्ण होता है, वो बन सकते हैं।